فَمَنُوتِيَ كِتَابَهُ بس وہ جو کوئی دیا گیا نامِ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ ہمیں اس میں کر دیں. فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا لو دیکھ لو پڑھ لو میرا نامِ اعمال. بالکل اس طالب علم کی طرح اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو امتحان میں اچھے نمبر لے کے پاس ہوتا ہے اور اپنا ریزلٹ کارڈ رپورٹ کارڈ خوشی خوشی گھر میں لا کر سب کو دکھاتا ہے ماں کو باپ کو بھائیوں کو. ہاؤ مکرو کتابیہ جو چیز انسان کو خوشی دیتی ہے یا جس میں اس کی عزت ہوتی ہے دوسروں سے شیئر کرنا چاہتا ہے. لوگ پوچھیں گے بھائی تمہارے اتنے اچھے نمبر کیسے آ گئے. جیسے آج بھی دنیا میں جو طالب علم فرسٹ آتے ہیں سیکنڈ آتے ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں اخباروں میں چھپتا ہے پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کب پڑھتے تھے آپ کا کیا اسکیجول تھا تو وہ کیا کہے گا لمبی چھوٹی باتیں. صرف ایک جملہ ہے نوٹ کیجئے گا جنت پہ جانے والے کو جب لوگ پوچھتے ہیں سناؤ کیا کرتے تھے تو اس کا اعلی اخلاق کیا ہے کسر نفسی کے ایک سینٹنس بولے گا لمبی چھوڑی باتیں کوئی نہیں اپنے تعریفوں کے کلابے نہیں ملائے گا بلکہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ بس یہ تھی میری نیکی میں یہ گمان رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. یہ کیا بات ہوئی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ جہاد نہ قرآن صرف اتنی سی بات پہ اس کو جنت مل گئی کہ یہ حساب سے ملاقات کا یقین رکھتا تھا. کیوں بھائی اس لیے کہ یہی یقین کام کرواتا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہ چھپا ہوا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ جو بندے سے نمازیں بھی پڑھاتا ہے صدقے بھی کرواتا ہے اور باقی کام بھی کرواتا ہے. یہ یقین آ جائے نا کہ میری یہ چیزیں قیامت کے دن ڈسپلے کی جائیں گی اور اس دن میں سب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو سوچ کے انسان بات کرے گا بولے گا تو 10 دفعہ سوچے گا پھر بات کرے گا اور اس کو پتہ لگ جائے گا دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملتے ہی کہ میں خیر سے ہوں میں ٹھیک ہوں خوشیوں میں دکھائے گا. آگے سورت انشقاق کی آیت 9 میں بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ نام اعمال کا خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. اب اس کا اصل اپلیکیشن کیا ہے ہاتھ میں رپورٹ تو مل گئی نا. اب بعض دفعہ کہتے ہیں رپورٹ کارڈ تو ملتا ہے پھر اس کے بعد اناؤنس کرتے ہیں اب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ملے گا کوئی کمپنی ان کو گھڑی دے گی کچھ نہ کچھ گفٹس ملتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس بندے کا جو پروٹوکول ہے جنت میں فہو فی عیشت راضیا وہ دل پسند زندگی میں ہوگا راضی رہنے والی زندگی. ہو سکتا ہے اس کی دنیا عیشت اور راضیہ نہ ہو نہ پسندیدہ ہی ہو. عیشہ زندگی کو کہتے ہیں اسی سے لفظ معیشت بھی ہے عائشہ بھی اسی سے ہی ہے اور راضیہ راضی کرنے لی. اب یہاں ذرا ہائی لائٹ کریے عیشت اور راضیہ دل پسند عیش میں ہوگا کون سی دنیا میں اس دنیا میں. تو جو اس دنیا میں عیشت اور راضیہ چاہے گا اور اللہ کی ناراضگی کے بنیاد پہ بھی ملے بس چاہیے دنیا کی زندگی اچھی اس کو وہاں کیا پھر ملے گا اگلی آیتوں میں ذکر آ جائے گا نا. فرمایا فی جنت عالیہ وہ بلند جنتوں میں ہوگا عالی مقام جنت قطوفہا دانیہ جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوں گے. قطوف قطف سے ہے قطف اصل میں اچکنے کو کہتے ہیں توڑنا پکنگ پک اپ جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹرابری پکنگ سے. اور دانیہ جھکی ہوئی یعنی پھلوں کے گچھے جو اپنے بوجھ سے ہی گرتے جا رہے ہیں. کہا کیا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یہ ہے انجام دنیا میں تم نے رب چاہی زندگی چاہی وہاں تمہیں عیشت راضیہ مل گئی. دنیا میں تم اپنے مقصد سے جیتے رہے تمہیں وقت ہی نہ ملا کھانوں کو پینوں کو انجوائے کرنے کا تو یہاں کا کھاؤ ہنی ہنیا کرا سورت نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں سہتا پچتا وہ کھا لو جو جسم کا حصہ بن جائے جو بوجھل نہ پڑے جو پیٹ خراب نہ کرے جو موٹا نہ کرے. اللہ اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وہ عورت یاد کیجئے جو عبداللہ بن مبارک کو صحرا میں ملی تھی سفر میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بیٹوں سے ملی تو بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کوئی کھانا لے کر آئے اور وہ سورت کہف کی آیت پڑھی. جب کھانا آ گیا تو ان کے سامنے کھانا رکھ کے یہی آیت پڑھتی کلو وشربو ہنیم خوشی خوشی کہو بیما سلب تم فی الایام الخالیہ اپنی طرف لے گئی کہ جو تم نے پچھلے دنوں میں میرے ساتھ اچھی نیکیاں کہ اس کے بدلے میں کھاؤ پیو. ये कौन पढ़ेगा जिसको कुरान जुबान नहीं आता होगा, जिसको इसका तर्जमा समझ आता होगा। अब ये सारा प्रोटोकॉल देखें जो हमने पढ़ा, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। क्या दुनिया में यही पाने की ख्वाहिश नहीं है हर एक की? आज दुनिया में जो दौड़ लगी हुई है, पैदा होते बच्चे से लेकर बड़े होकर क्या बनोगे, अच्छा स्कूल, स्टैंडर्ड कहाँ, जॉब किसकी, किस डिग्री की क्या हैसियत है, क्या इन सब के पीछे इशा तो रादिया नहीं है? हर माँ यही चाहती है ना कि उसके बच्चे की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो, हर बाप की भी यही ख्वाहिश है। अपनी जान पे लेकर भी अपने बच्चों को ये सब कुछ देना चाहते हैं। क्या ये सब कुछ चाहे तो मिल जाता है? नहीं मिलता ना, कोशिश कर सकता है इंसान, मिलता नहीं। और अगर आखिरत की कीमत पे, बड़े जवान बच्चों को नमाज पे नहीं लगाया, अभी तक उनका कुरान पूरा नहीं हुआ और उनकी दुनिया की फिक्रें करते रहे करते रहे, तो आप बताइए कि क्या उनको वहां ये सब कुछ मिलेगा? सोचने की बात है। इंशाल्लाह ये दुनिया तो बन ही जानी है, आखिरत की जिंदगी बन गई ना, फिर फायदा होगा, फिर इंशाल्लाह आप ज्यादा इसको अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय करेंगे। अगर सब कुछ बच्चों को मिल भी गया इधर, तो फिर उसके बाद क्या है? अंदेशे, खदशे, अपग्रेड करना। आप बच्चे को पढ़ाते हैं, 10 साल जॉब किया, अब जॉब उतर गई, क्यों? कहते हैं वो अपग्रेड करना है, अब वो नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब नई रिसर्चेज आ गई, वो करना है वो करना है, और इसी में सारी जिंदगी गुजर जाती है। आज बल्कि आप देखिए कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनकी जॉब्स उतरी नहीं है, जो कारोबार है वो कमा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे कैरियर सारी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ते रहे उनको जॉब नहीं है। यही बीच में इश्यूज आ चुके हैं, दिन ब दिन मशीनें आती जा रही, इंसान कम हो रहे हैं। आपको तो क्या, जितने लोग जॉबलेस है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वेस्ट में हर काम तो मशीनों से हो रहा है। पहले एक इंसान बैठता था और उनको घंटों के हिसाब से पे करना है, अब एक ही दफा मशीन लगा के कहते हैं घर जाके सो जाओ, ऐसे मौजूद है। ऐसे ट्रेवल मैंने किया अमेरिका में, जब ये लास्ट ट्रिप था 2 साल पहले, तो उसमें घर से निकलने से लेकर यानी जहाज में बैठने तक आपको कहीं कोई इंसान नहीं दिखता, यानी इर्द गिर्द होते हैं, आपका मामला नहीं किसी से, कार्ड डालते थे कट 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 कट, कहीं कोई बंदा आपको पूछता नहीं आप किधर है, मशीनें आपसे बातें करती हैं, और वो अपने पैसे बचा रहे हैं, और अब दिन ब दिन वो यही कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका बहुत ज्यादा इकोनॉमी का लोड कम हो रहा है। अब वो इंप्लॉयज कहाँ जाएंगे? जॉबलेस हो जाएंगे ना। तो दुनिया में सब कुछ पाकर भी कोई पता नहीं कि सब कुछ मिला, तो वो दीन, वो किताब, वो कुरान जिसने आखिरत में इशरत और आदिया देनी थी, उससे हमने दूर रखा। ये बड़ा संजीदा नुक्ता है, दुनिया की कोशिशें करें साथ साथ आखिरत की भी, बल्कि मैं तो कहती हूँ आखिरत की पूरी कर लें पहले, बच्चों को दीन पे लगा लें, फिर उसके बाद जो उनका नसीब है, दुनिया तो सारी जिंदगी लेनी है ना, और इंशाल्लाह जो उनके नसीब की चीजें वो उनको मिलेंगी। अल्लाह हमारे नस्लों को भी नेकियों से भी महरूम ना करे और इन नेमतों से भी महरूम ना करे। और ये जो लफ्ज है ना कुतुफुहा दानिया, इसके बारे में हदीस आती है कि जन्नती अपने बिस्तर पे लेटा होगा, दूर उसको जन्नत की एक शाख दिखेगी जिस पे फल लटक रहा है, उसका दिल चाहेगा कि मैं इसको खाऊं, बस दिल में आएगा, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं, कोई बेल नहीं बजानी, कुछ नहीं। इतने में उस दरख्त की शाख जो ना वो झुकेगी, दानिया, बिल्कुल उसके मुंह के करीब उसका फल लगेगा, और फरमाया कि जन्नत के जो फल है ना उस पर छिलका भी नहीं है और अंदर गुठली भी नहीं है, और धोने की तो ऑफकोर्स जरूरत ही नहीं, ना मक्खियां हैं ना मट्टी है, वो खाना शुरू करेगा, जितना उसका दिल चाहेगा वो खाएगा। हनीम, खाओ पियो मौज करो, जब खा लेगा ना अब दिल भर गया, अब क्या होगा, बस खत्म, कुछ नहीं कहना। इतने में वो शाख पीछे पलटेगी और जो फल खाया था ना वो रेनोवेट होके थोड़ी देर में दोबारा पहले की तरह हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या ये नामुमकिन है? मुमकिन है, जिस जात ने एक कड़वे बीज से इतनी बड़ी बेर लगा दी उसके लिए ये क्या मुश्किल है? असल बात यह कि हमें इसका यकीन हो। अब इसके बरक्स एक बदबخت इंसान है, वह ममनूत ये किताब बहु बिशी माली फयकूलु या लैतनी लमूत किताबिया, और वो जिसे इसके अमाल की किताब इसके बाएं हाथ में दी जाएगी, वो कहेगा काश मुझे मेरी किताब ही ना मिलती, और किताब से मुराद इधर मकतूब नामे अमाल, काश मेरा नामे अमाल गुम जाता, पेपर खो जाते, वला मदरी माँ हिसाबिया, और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है, यानी मुझे वापस ना मिलता रिजल्ट अपना। या लैताहा कानत अल-क़ादिया, काश के मौत मेरा काम तमाम कर देती। ये मौत के नामों में से एक नाम है अल-क़ादिया, तमाम करे, कादी, काजी कौन होता है, फैसले करते हैं ना, तो मौत भी तो फैसले ही कर देती है ना, कजा आई कजा चले, वही जुमला है, यानी काश मेरी मौत मेरा काम तमाम करती। माग़नानी मालिया, मेरे माल ने तो मुझे कुछ भी फायदा ना दिया, कितना जमा किया कहाँ कहाँ संभाला, किस किस तरीके से लिया, और इस माल ने मेरा गम कितना ले लिया। हर वक्त हौका बना रहता था ये माल के बनेगा क्या। 10 साल की भी घर में खाने पीने की चीजें और इस्तेमाल की मौजूद हो, फिर भी गम ये था कि हाँ 1 महीने ना आया घर में माल, तो पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा तो गलबा भी मुझसे जाता रहा। सुल्तान सल्तनत यानी मेरे बच्चे, औरतों की सल्तनत उनका घर, मर्दों की सल्तनत उनके बिजनेस, और हुक्मरानों की सल्तनत उनके मुल्क जो द्राक्टे। कोई गलबा आज मेरे काम नहीं आया, कुछ भी तो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। आज तो मेरे पास इधर कुछ है ही नहीं। सब चीजें जिन पर इंसान को उम्मीद होती है वो चीजें खत्म हो गई। फरिश्ते इसकी इन बातों को, जो बड़ी अच्छी बातें कर रहे इस वक्त, सुनकर कोई इंप्रेस नहीं हो रहे। क्या कहते हैं, खुजूहू पकड़ो इसको, टेक हिम, पगुल्लू और तौक पहना दो। गुल्लू गिल से गल, गिल पकड़ो इनके गले में तौक पहना दो, कॉलर पहना दो इनको। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे दोजख में डाल दो। ऐसे नहीं लग रहा कि एक जानवर भुला फिर रहा था, फिर मालिक ने उसके गले में पट्टा डाला और पकड़ के उसको ले जाओ आग में डाल दो। दुनिया में खुले फिर रहे थे ना जानवरों की तरह, आज इनको पट्टे पे ना दो। तुम मफी सिलसिलती जर उहा सब ऊ नजीरान फसलुकू, फिर इसे ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। जहन्नमी को जिन जंजीरियों में बांधा जाएगा, इसकी एक कड़ी ये हाथ, यहां से उंगली से लेके ना, ये उंगली की टिप से लेके यहां तक हाथ होता है अरबी में, हम तो हाथ इसको कहते हैं ना, अरब लोग यहां से लेके कोनी तक। 70 हाथ लंबी एक कड़ी होगी, यानी जंजीर को जरा दोबारा देखें। फी सिलसिला, सिलसिला कहते हैं चेन को। जर उहा लंबाई उसकी, जिरा सब ऊन 70 जिरा अन हाथ, यानी आप हाथ लगाए ना यहां से लेके, ये अबाउट कितना बनता है, 1.5 फुट, तो 70 से करिए 1.5, तो कितना बन गया, 100 फुट से भी लंबी एक कड़ी है उसकी। सवाल पैदा होता है कि इतनी लंबी लंबी चेनों में फिर जहन्नमियों के जिस्म कैसे जमाए जाएंगे। तो रिवायत में पता चलता है कि जहन्नमियों के जिस्म फूल जाएंगे अजाबों की वजह से, आग के अंदर जलने की वजह से, और सांप बिच्छुओं के डसने की वजह से फूल जाएंगे। हत्ता के हदीस में आता है कि जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ जितना हो जाएगा। ये सही रिवायत है। ये कान की लो है ना, ये जो पट्टी जो होती है कान की नोक, यहां से इसका जो फासला है ये कई कई मील लंबा हो जाएगा, फिर उसको जंजीरियों में बांधा जाएगा। अब ये किसका हाथ है, कितना लंबा है, अल्लाह नोज दी बेस्ट। बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु, पकड़ो इसको बांधो। फसलुकू बांधो, ये बहुत खुला फिरता था इसको बांधो। अब सवाल पैदा होता है इतनी सख्ती करता क्या था, इसका जुर्म क्या है। उधर तो था ना कि फकुलूहू खाओ हनीयम बिमा असलफ तुम फिलैया मिल हालिया, वहां पता चला कि जन्नत में जाने वाले ने दुनिया में कुछ मेहनतें की थी। अब इसका जुर्म सुन लीजिए, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान नहीं रखता था। पहला गुना, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, असल सारे गुनाहों की रूट कॉज ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम है, अल्लाह को नहीं मानता था, नाम का ईमान था। अभी ये जो भी दर्स हुए हैं हमारे वीकेंड पे, हमने रमजान की तैयारी में अकीदे को शुरू किया है, क्योंकि अल्लाह की कदर नहीं है तो अल्लाह की बात की कदर कहां से होगी। जिसकी कदर नहीं होती है आप उसकी बात मान सकते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो अल्लाह की कदर नहीं थी, उसकी अजमत का एहसास नहीं था। दूसरा जुर्म, वला यहद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की रغبत नहीं दिलाता था। अगर आप इन दोनों आयतों को जोड़ लें तो अल्लाह के भी हक नहीं दिए तो बंदों के भी नहीं दिए, कंजूस था, इंसानों पे माल नहीं लगाता था। आज क्या हाल है, फलैसा लहुल यौमा हुना हमीम, बस आज इसका ना कोई दोस्त है। हमीम गर्म जोश दोस्त, उबलते हुए पानी को भी कहते हैं, यानी सारी जिंदगी जिन चीजों में खोया रहा, आज उन दोस्तों में उन साथियों में कोई भी इसकी मदद को नहीं आया। वला तामुन इल्ला मिन गिसलीन, और ना सिवाय पीप के इसकी कोई गजा है, पीप बस जख्मों का धोवन। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, जिसे नहीं खाते गुनाहगारों के सिवा कोई और, खता करने वालों को पीप पिलाई जाएगी। दुनिया में कोल्ड ड्रिंक्स के आदि थे, कई किस्म के ड्रिंक्स थे, कहीं एनर्जी ड्रिंक्स थे, और वहां इनको घिसलीन पिलाई जाएगी, ठंडा मशरूब बर्फ की तरह का। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। आप देखिए कि ये इंजाम हम पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे लगता है बार बार पढ़ के बस ठीक है ना, लेकिन इसको अपने ऊपर लेके सोचे। कभी खाना खाते हुए, खाना छोड़िए ऑरेंज जूस पीते हुए बीज मुंह में आ जाए, सैलड में लेमन डालते हुए लेमन का बीज भी मुंह में आ गया, कैसा खाना था। हम जरा सा टेस्ट हमारी मर्जी का नहीं होता ना, हम फेंक के मुंह उधर कर लेते हैं, इतना बुरा मुंह बनाते हैं कि अल्लाह की बना। और जहन्नमियों के बारे में हदीस में आता है कि जहन्नमियों को भूख लगेगी, जहन्नुम का जो आधा अजाब है ना वो भूख का अजाब है। और कभी दुनिया में आपको बड़ी शदीद भूख लगी हो ना, खास पे जो लोग बीमार होते हैं, शुगर पेशेंट हैं या कोई उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो एकदम क्या लगता है, भूख लगता ही सारा जिस्म को लैप करता है, ऐसे उनको लगता है कि बस गिरे के गिरे। बिल्कुल यही बात यहाँ दिखती है। और इतने भूखे होंगे कि कांटे तक खा जाएंगे, ये पीना नहीं चाहते हैं लेकिन पियेंगे। और सूरत मोहम्मद में गालिब नाम पढ़ चुके हैं ना कि उनके सरों पे मकाम यमिन हदीद, लोहे के हथौड़े मारे जाएंगे। जब ये गंदा पानी उनके सामने पेश किया जाएगा, इनकार करेंगे नहीं पीना, तो उनके सर में हथौड़े मार के सर के रास्ते से जिस्म में डाल दिया जाएगा। और देखिए ये सच है, कोई एग्जेजुरेशन है इसमें आपको, तो मैं सिर्फ तर्जमा ही बता रही हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि इन आयतों के आगे तो बंदा बोल ही नहीं सकता, बेबस हो जाते इंसान। और हम सब अल्लाह के सामने खड़े हैं, जरूरत है हजरत उमर की उस बात पे अमल करने की कि कहा करते थे लोगो हासिबो, अपना हिसाब ले लो, अबलान तो हासबो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। आज अपने अमाल का अंदाजा कर लो कि कल किया जाए। देखिए हम सबके अमाल के वजन है ना, हम खुद कर लेंगे तो आसानी होगी कि नहीं। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप सबको पता है लिमिट है 20 30 25 किलो जो भी है, जो लोग घर से तोल के सेट करके ले जाते हैं उनका सफर आरामदेह होता है। और अगर कोई अंदाजे से डाल दे, जाके पता चला 10 किलो बढ़ गया, और जब वो सूटकेस खोलेगा और उसमें से कुछ कीमती चीजें निकलेंगी, जाया होंगी, इधर कुछ रह गया कुछ उधर रह गया, रुसवाई है ना, और शर्मिंदगी अलग है, और टाइम कम हुआ तो फ्लाइट भी मिस होगी। तो आज दुनिया में हर चीज रात को सोते वक्त सोचे, आज नामे अमाल में कितना वजन डाला है, और जो डाला है कोई प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं डाल दी, नाजायज चीज तो नहीं डाल दी। आपने देखा कि अक्सर जो हैंड कैरीज होते हैं उसको ये स्कैनर्स में से गुजारते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आती थी, एक दफा गुजार लिया शुरू में दर से ओके, लेकिन अक्सर आप देखते हैं पहले भी गुजार लें, फिर एंड पे जहाज से पहले जो लास्ट लाउंज होता है उसमें भी डालते हैं, इवन अब ट्रांजिट है, तो मैं सोचती थी इनके सामने तो हम जहाज से गुजरे हैं निकले, हमने क्या यहाँ रख लेना है। इस दफा भी इत्तफाक हुआ, हम लेबनान से थे या कहीं से गुजरे, तो जब वो आखिरी लाउंज में लेके आते हैं ना, तो अंदर उन्होंने एक शीशे का केज बनाया हुआ बिल्कुल जहां स्कैनर से गुजरते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा है जमीन से, और 2/3 तक भरा हुआ था। और आपको तो उसमें क्या है, जो लोगों के सामान में से चीजें निकलती हैं, कैंचियां छुरियां और बच्चों की गन्स बहुत सारी, यानी मैंने कहा ये असली है, तो इन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये असली है, ये असली होती तो इधर पड़ी होती, यानी जो भी चीजें हैंड कैरी में लोगों ने ऐसी डाली होती है ना वो उनके स्कैनर्स में आ जाती हैं, उनको निकाल के फिकवाते हैं, और उन्होंने यादगार के लिए रखा हुआ कि तुम भी देख लो, अगली दफा तुम ना इनमें से कुछ ले आना। तो मैंने जब उस केज को देखा तो एकदम मुझे फीलिंग बहुत अजीब सी आई कि पता नहीं क्यामत के दिन क्या क्या निकलना है हमारे सामान में से। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई चीज छुप के नहीं रहेगी, कहते अपने हिसाब ले लो ताकि क्यामत के दिन तुम पर आसानी हो, जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश करना है और उस दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यामत के दिन लोग 3 मरतबा अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह के सामने पेश करना, 3 दफा पेश किए जाओगे, पहली और दूसरी बार तो उजर माजरत और झगड़ा करते होंगे, यानी पहली दफा आएंगे तो सॉरी एक्सक्यूज मी होता, थोड़ा सा झगड़ेंगे, लेकिन तीसरी पेशी जो आखिरी होगी उस वक्त क्या होगा, तो रदू ना, उस वक्त नामे अमाल उड़ाए जाएंगे, किसी के दाएं हाथ में आएगा और किसी के बाएं हाथ में आएगा। तो अल्लाह के सामने पेश होने से क्या मतलब है कि तुम्हारे सब नतारे होंगे। कभी ट्रेवलिंग को देखे ना तो आपको ये सब आयतें आराम से समझ आएंगी, दिल धक धक का, कुछ भी ना हो आपके सामान में, होना भी क्या है, जब स्कैनर से गुजरती है, जब आपको ग्रीन चैनल्स में से गुजारते हैं, जब आपको मशीनों पैसे गुजारते, एक तो तकलीफ बहुत होती है, मुश्किल लगता है उठना बैठना करना, ये क्या हो गया वो, और दूसरा होता है पता नहीं अंदर से क्या इनको मिल जाए, पता नहीं इनको क्या होने लगे। इसलिए जरूरत है इस बात को कि इंसान अपने आप को लेकर चले। एक रिवायत सुनाती हूँ आपको, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, हजरत हंजला का जिक्र तो आपने सुना हुआ है ना, गसीलुल मलाइका, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, عبداللہ بن حنزلہ جنہیں فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا ان کے بیٹے یعنی عبداللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. سوچیے آپ اپنے اوپر لیں بس, اب آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے. اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال کی پشت پر لکھی ہوں گی یعنی بیک سائڈ پہ جو اس پر ظاہر کی جائیں گی, یعنی اس کو خود نظر آ رہی ہے. ایسی ہے کہ جیسے مثال ہے کہ میں یہ پیپر ہے تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو میں یوں کر دوں تو لکھا ہوا اس سے آپ کو دکھ رہا ہے نا, تو اس کی بیک پہ لکھی ہوں گی جو اس پر ظاہر کی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بتا کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں, یعنی اس کو دکھائے جائیں گے اس کے اعمال. وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک خدایا یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کیا نہ فضیحت کیا, اب یہاں بھی میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا اعمال نامہ لے کر خوشی خوشی ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا. ہاؤ مکرو کتابیہ. حضرت ابن عمر کی روایت ہے, فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا ہے فلاں گناہ کیا ہے, یہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب ہلاک ہوا, یعنی اتنے گناہوں کے ساتھ میں کیسے بچوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں بھی میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا, اب آج تجھے کیا رسوا کروں, جا میں نے تجھے بخشا. پھر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں, لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو گواہ, یعنی یہ تو مومن کا معاملہ تھا نا, تو جو کافر اور منافق ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, ان کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجھ پر جھوٹ گھڑا. تو لوگوں سنو ان ظالموں پر اللہ کی پٹکار ہے, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. تو یہ جو بات ہے نا فی جنت عالیہ یہ کیسی ہے, اس کے اوپر بھی ایک حدیث سن لیجئے. ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بلند مرتبہ لوگ کم مرتبہ لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے اتر آئیں گے, یعنی نیچے والوں کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں بھلا, کوئی آپ میں سے بتائے؟ جی بتائیے شابر, صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جب دیکھ لیں گے اوپر تو ان کو اوپر ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ جنت کی خوبی یہ ایک دفعہ جس نے جو نعمت دیکھ لی پھر اس سے واپس نہیں لی جائے گی. تو اوپر والے کو اللہ تعالیٰ نیچے بھیجیں گے اور خوب محبت اور اخلاص سے سلام مسافر اور آؤ بھگت ہوگی, البتہ نیچے والے بس سبب اپنے اعمال کی کمی کے اوپر نہیں چڑھیں گے. میں اس کو ایسے سوچ رہی ہوں کہ جہاز میں کسی فرسٹ کلاس کے پیسنجر کو اگر وہ چوائس لے تو اس کو پیچھے آنے کی اجازت دے دیں گے, گو ہیڈ بیٹھ جاؤ ہمیں کیا, لیکن پیچھے والے کو آگے نہیں بیٹھنے دیں گے بیکاز آپ نے اتنا پے نہیں کیا. ایک روایت میں کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان میں. حضرت برا کہتے ہیں جنت کے پھل اس قدر جھکے ہوں گے کہ جنتی اپنے چھپر کھٹ کس کو کہتے ہیں, مسحری بستر بیڈ, اس پر لیٹے ہی لیٹے ان میووں کو توڑ لیا کریں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں ہر ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا پروانہ ملے گا یعنی اجازت نامہ, جس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوہ جنت عالیت قطوفہا دانیہ. کیا ترجمہ؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے, یہ لکھی ہوئی چیز فلاں کی فلاں کے بیٹے کی یعنی اس کے باپ کا نام بھی ہوگا, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت عالیہ یعنی بلند جنتوں میں جس کے پھل جھکے ہوئے ہیں, اس کو وہاں جانے دو. وہ ایک قسم کا ایک اس کو گرین کارڈ مل جائے گا اور دکھاتا جائے گا اور آگے جائے گا. یہ طبرانی کی روایت ہے. بعض روایتوں میں آتا کہ یہ اجازت نامہ پل سرات پر ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا, جیسے بورڈنگ پاس پکڑاتے ہیں جاؤ اس کو دکھا کے جہاز میں جاؤ, اور ان کو بطور احسان اور مزید لطف و کرم کے زبانی بھی کھانے پینے کی اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو سیدھے سیدھے رہے, اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرتے جاؤ اور سیدھے اور قریب قریب رہو, اور جان رکھو کہ صرف اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بھی اعمال نہیں کافی؟ کہاں میرے بھی نہیں, یہاں تک کہ اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت میرے شامل ہو جائے. لہٰذا سیدھے کام کریں, اللہ سے امید رکھیں, اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اب یہ جو جہنم کی بات ہے اس پہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ جس کو پڑھتے وقت واقعی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو جن کو بھی ہم جانتے ہیں, دیکھیں کسی کو کافر کہہ دینا کتنا آسان ہے, लेकिन जहन्नुम में जलता देखना कोई खुशी की बात होगी। वहां अल्लाह तआला किस तरह से इनको पकड़ेगा। ये जो हाथ है ना सिरान, इसके बारे में इब्ने अब्बास और इब्ने जुराज कहते हैं ये नाप फरिश्तों के हाथ का, यानी इंसानों के हाथ का नहीं है। इब्ने अब्बास कहते हैं ये जंजीरें इनके जिस्म में पिरो दी जाएंगी और पखाने के रास्ते से निकाल दी जाएंगी और मुंह से निकाली जाएंगी। इस तरह उसे आग में भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। ये भी रिवायत है कि ये जंजीरें डाली जाएंगी और नाक के दोनों नथनों से निकाली जाएंगी, जिससे वो पैरों के बल खड़ा ही ना हो सकेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अगर कोई बड़ा सा पत्थर आसमान से फेंका जाए तो जमीन पर वो एक ही रात में आ जाए, लेकिन अगर इसी को जहन्नमियों के बांधने की जंजीर के सिरे पर से छोड़ा जाए तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 40 साल लग जाए। ये तिरमिजी की रिवायत और हसन रिवायत है। कोई ये ना सोचे कि ये कमजोर दर्जे की रिवायतें हैं। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम कामों के करने की तौफीक दे जिनके ना होने की वजह से उनको ये सब कुछ मिला।